26। एक बार अश्वत्थामा के साथ मैं यूं ही राजभवन पर गया। राजभवन के सामने सरोवर के किनारे दुर्योधन के मामा शकुनि बैठे हुए थे। उनके हाथ में एक श्वेत शुभ्र राजहंस था। उस श्वेत पक्षी के प्रति मेरे मन में बड़ा आकर्षण था। पानी में अपने पैरों को डांड चलाता हुआ वह गर्दन को इतने शानदार तरीके झटके देता हुआ घूमता रहता है, वह मानो जल साम्राज्य का वह अकेला ही सम्राट हो। हम दोनों शकुनि मामा के पास गए। वे लगभग महाराज राष्ट्र के जैसे ही दिखाई पड़ते थे, लेकिन उनको एक आदत थी, बातें करते समय वे सदैव भौहों को हिलाते रहते थे। उनसे बातें करने वालों का ध्यान बार बार उनकी छोटी 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 आंखों के ऊपर स्थित मोटी भौहों की ओर जाता। हाथ में पकड़े राजहंस को सहलाते हुए वे अश्वत्थामा से पूछा, क्यों अश्वत्थामा, सभी राजकुमार युद्धशास्त्र में कहाँ तक बढ़े? अर्जुन धनुष में, दुर्योधन गदा में, भीम मल्ल विद्या में, नकुल खड्ग में, दुशासन मुष्टि युद्ध में, सहदेव चक्र में और युधिष्ठिर युद्ध नीति में अत्यंत निपुण हो गए, अश्वत्थामा ने उत्तर दिया। तब तो फिर जल्दी एक बार सबकी परीक्षा लेनी चाहिए। जी हाँ, यही विचार पिताजी भी कर रहे हैं, अश्वत्थामा ने कहा। इतने में ही एक सेवक पाषाण के पात्र में दूध लेकर आया। उसने वह पात्र तालाब के किनारे रख दिया। शकुनि मामा ने राजवंश अश्वत्थामा के हाथ में देकर झुकते हुए सरोवर में से अंजलि भरकर पानी लिया और उस पाषाण पात्र में डाल दिया। मामा जी, यह क्या दूध की बचत की जा रही है? अश्वत्थामा ने पूछा। नहीं, यह राजहंस है, इस पात्र में चाहे कितना पानी डाल दो परंतु फिर भी वह पानी नहीं पिएगा, उत्तरी से आँच पोंछते हुए शकुनि मामा ने भाव में उसी करते हुए कहा। सो कैसे, अब साक्षात देख ही लो। यह कहकर मामा ने राजहंस को धीरे से अश्वत्थामा के हाथ से लिया और उस पत्थर के पास बैठा दिया। तुरंत उस पक्षी ने अपनी शानदार गर्दन उस पत्थर के पात्र में डाल दी। चुर चुर आवाज करता हुआ वह दूध पीने लगा। थोड़ी देर बाद उसने गर्दन बाहर निकाली। उसने गर्दन को एक बार झटका दिया। उसकी चोंच से में अटके हुए दूध के चार कण बाहर निकल आए। हम सब ने उत्सुक होकर झांक कर उस पत्थर के पात्र में देखा। उसमें अंजलि भर पानी जो का तो बच रहा था, केवल शुद्ध पानी। शकुनि मामा ने उसको फिर तालाब में डाल दिया और भावों को हिलाया। उस समस्त घटना पर मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ। विचारों के घोड़े मेरे मन के रथ को खींचने लगे। मनुष्य भी इस राजहंस की तरह ही नहीं होता है क्या? उसको जितनी आवश्यकता होती है उसको ही ग्रहण करता है और शेष छोड़ देता है। मैंने भी ऐसा ही नहीं किया था क्या? युवराज दुर्योधन और अश्वत्थामा, इन दो को छोड़कर इस विशाल राजनगरी के अन्य किसी व्यक्ति को मैं अपने निकट लाया था? औरों के प्रति मेरे मन में अपना तो क्यों नहीं था? इसका उत्तर कैसे दिया जा सकता था? और राजहंस क्या कभी यह बात बता सकेगा कि उसने पानी छोड़कर दूध ही कैसे चुन लिया? लेकिन इसमें मेरा भी क्या दोष है? युवराज दुर्योधन ने स्नेह से मेरी पूछताछ की, इसलिए मैं उससे प्रेम करता हूँ। मनुष्य का प्रेम धरती की तरह होता है, पहले एक दाना बोना पड़ता है, तभी धरती के अनेक दानों से भरी हुई बालियां देती हैं। मनुष्य भी ऐसा ही होता है, प्रेम का एक शब्द मिलने पर वह उसके लिए मुक्त मन से प्रेम की शब्द गंगा बहाने को तैयार रहता है। इसलिए दुर्योधन के प्रति मेरे मन में प्रेम था। अश्वत्थामा तो बड़ा भोला भाला और निश्चल था, उसमें और स्वर्ण में मुझमें कोई अंतर प्रतीत नहीं होता था। अन्य किसी से मेरा परिचय ही नहीं था, सबसे परिचय करना संभव भी नहीं था क्योंकि उतना समय मेरे पास कहाँ। वह तो हमेशा अपनी भीम अपनी शक्ति के घमंड में चूर हुआ उस अखाड़े की मिट्टी में ही लोट मारता रहता था। जब वह अखाड़े के बाहर होता तब कुछ न कुछ खाता ही रहता। उसका स्वर कितने भोंड़े थे, उसकी आंखें बड़ी बड़ी टपकोड़े की सी थी। जब वह सोता था तब आंधी की तरह खराटे भरता था। वह युवराज युधिष्ठिर तो घंटों तक अश्वत्थामा से युद्ध नीति कर्तव्य आदि गुण विषयों पर बातें करता रहता। नकुल और सहदेव के बारे में तो मुझको यह भी नहीं मालूम था कि ये कैसे हैं तथा क्या करते हैं। युवराज दुर्योधन और दुशासन को छोड़कर और सब व्यक्तियों तो मुझको व्यर्थ ही फैले हुए अमरबेल जैसे लगते थे। क्या करना था उनसे परिचय करके? मनुष्य को एक उस राजहंस की तरह होना चाहिए, जो अपने मन को अच्छा लगे वही लेना चाहिए, शेष छोड़ देना चाहिए। मुझको अब तक ऐसा ही लगता आया था। मैं और अश्वत्थामा दोनों राजभवन से लौटे। आते समय अश्वत्थामा को कोई बात याद आ गई और बीच में ही बोला, कर्ण, मैंने मामा से तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने तुमसे राजकुमारों की तैयारी पूछी थी, युद्धशाला के सभी शिष्यों की नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारे बारे में मैं बहुत कुछ कह सकता था। क्या क्या कहते तुम मेरे बारे में? इन कुंडलों और कवच के बारे में ही ना, उनके विषय में अब नगर के सभी लोग जान गए। नहीं, मैंने कहा होता कि अर्जुन धनुष में, दुर्योधन गदा में, भीम मल्ल विद्या में, नकुल खड्ग में, दुशासन मुष्टि युद्ध में, सहदेव चक्र में, युधिष्ठिर युद्ध नीति में और कर्ण, इन सबके सब प्रकारों में अत्यंत प्रवीण हो गया है। वह मेरी स्तुति कर रहा था या सत्य कह रहा था वह जानना कठिन था, क्योंकि प्रेम मनुष्य को अंधा कर देता है। मैं उसका मित्र था, उसका मित्र प्रेम क्या मुझको अंधा नहीं कर रहा था? इसीलिए मैंने कुछ भी न कहा। 27। 6 वर्ष का समय ऐसे उड़ गया जैसे पक्षियों का झुंड उड़ जाता है, उसका पता भी न चला। युद्धशास्त्र में कुछ भी सीखना शेष नहीं बचा, बल्कि मैंने और शोर ने रात में जो अतिरिक्त अभ्यास किया था उसके कारण हमने प्रत्येक शास्त्र के कुछ ऐसे विशिष्ट कौशल सीख लिए थे ये केवल हम ही जानते हैं। उसी के अखाड़े में मैंने केवल लगातार परिश्रम ही नहीं किया था, बल्कि एक ही समय चार चाल मल्ल युवकों के साथ मैंने कुश्ती लड़ी थी। न जाने क्यों व्यायाम करते समय मुझको थकावट कभी नहीं मालूम पड़ती थी। इसकी विपरीत जैसे जैसे मैं व्यायाम करता जाता वैसे ही वैसे मेरा शरीर तप्त होता जाता। कभी कभी वो इतना तप्त हो जाता था कि मेरे साथ कुश्ती लड़ने वाले जोड़ीदार कहते, कर्ण सीधा जा और दो चार घड़ी गंगा के पानी में अच्छी तरह डुबकी लगाकर पहले अपना शरीर ठंडा कर, उसके बाद ही हमको अपने साथ कुश्ती लड़ने के लिए बुला। यह तेरा शरीर है या रथ की प्रखर तप्त हाल? मेरे बाहुकंटक दाव से तो वे इतने घबराते थे कि उस दाव को चलाने के लिए मैं जैसे चपलतापूर्वक अपने शरीर को सक्रिय करने लगता वे अपने आप एकदम चित्त हो जाते। उस दाव की एक विशेषता थी, प्रतिद्वंदी की गर्दन उस दाव में जकड़ ली जाती थी। शरीर की सारी शक्ति हाथ में एकत्रित कर उसका दबाव धीरे धीरे बढ़ाते जाने प्रतिद्वंदी कदम घुटने लगता था और वह मर जाता था। उस समय उसके हाथ और पैर पीठ पर गट्ठर की तरह ऐसे बच जाते थे कि गर्दन पर रखे हाथ को हटाने की शक्ति उसमें होने पर भी उसको हटा नहीं पाता था। मेरा शरीर सुरक्षित दाव था और युद्धशास्त्र के नियम के अनुसार वह केवल द्वंद्व युद्ध के लिए ही इतनी क्रूरता से प्रयोग में लाया जा सकता था। द्वंद्व का अर्थ एक ही था, उसमें दो योद्धाओं में से एक ही बचता था। इस युद्ध का परिणाम एक ही होता था, विजय अथवा मरण। कोई योद्धा जब मरने से के डर से शरण में आ जाता था तो उसको जीवनदान मिलता था, परंतु वह जीवनदान विधवा स्त्री के जीवन की तरह होता था। योद्धाओं के राज्य में इस प्रकार जीवनदान मांगने वाले का मूल्य तिनकी के बराबर भी नहीं होता। ऐसे द्वंद्व युद्धों में काम आने वाले सभी दाव मैंने सीख लिए थे, परंतु मेरा सबसे अधिक विश्वस्त एक ही दाव पर था, वह था बाहुकंटा। 28 काल की वायु के साथ ऐसे ही दिन और रात के अनेक सूखे पत्ते उड़ गए। प्रतिदिन प्रतिष्ठा में उठना, गंगा में जी भर के डुबकियां लगाना, प्रातःकाल से दोपहर तक जब तक पीठ अच्छी तरह गर्म न हो जाए गंगा में रहकर ही सूर्यदेव की आराधना करना, दिन भर युद्धशाला में शूल तोमर शतकड़ी प्रास मुशुंडी खड्ग गदा पट्टिश आदि विभिन्न प्रकार के शस्त्र फिराना, समय अपर्याप्त लगने पर आत्मश्रवण को लेकर पलीते के धूमिल प्रकाश में अचूक लक्ष्य भेद करना और अंत में सारे दिन की घटनाओं का चिंतन करते हुए कभी कभी चंपा नगरी की स्मृतियां मन ही मन दोहराते हुए सो जाना। इसी लीक पर चलते हुए 6 वर्ष बीत गए। बचपन का वसु मन के प्रांगण में दौड़ नहीं लगाता था, चंपा नगरी का स्थान अब हस्तिनापुर ने ले लिया था। कौतूहल और संदेह का स्थान अब संयम और पुरुषार्थ ने ले लिया था। चंपा नगरी में गंगा के किनारे बालों में अंकित होने वाले छोटे छोटे पैर अब हस्तिनापुर की भूमि पर दृढ़ता से पड़ने लगे थे। काल का अजगर 6 वर्ष निकल चुका था। 6 वर्ष, इन 6 वर्षों में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ यह सब कहा जाए तो वह अलग ही कहानी बन जाएगी। इन 6 वर्षों में तो मैं युद्धशाला का एक शिष्य मात्र था। यहाँ कभी किसी ने मेरे साथ शिष्य का व्यवहार नहीं किया। द्रोणाचार्य की देखरेख में कृपाचार्य के पथक में मेरा नाम था। उस पथक में हस्तिनापुर के सभी साधारण शिष्य थे। उन साधारण शिष्यों में से मैं सबसे अधिक साधारण था। शिष्यों की भीड़ में कृपाचार्य अथवा द्रोणाचार्य ने कभी मुझसे पूछताछ नहीं की थी, और सच पूछो तो वे मुझसे कुछ पूछे, मेरी पीठ पर हाथ फेरे, यह इच्छा मेरे मन में भी कभी नहीं हुई। जब जब शस्त्र का कोई कठिन दाव मेरी समझ में ना आता तब तक मैं क्षण भर आंखें बंद कर अपने गुरु सूर्यदेव का स्मरण करता और पल भर में उस दाव को समझ कर अलग हट जाता। ऐसे यक्षणी ने जादू की छड़ी घुमा दी। श्रद्धा ने बड़ी शक्ति होती है, किसी न किसी पर श्रद्धा रखे बिना मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता। शिष्यावस्था में मेरी सारी श्रद्धा अपने गुरु पर थी। भय से तो मेरा लेश मात्र भी पचा नहीं था, परंतु कभी कभी मेरा मन केवल इस बात के लिए विद्रोह कर उठता था कि शाला के ये दोनों गुरुदेव कभी मुझसे बात क्यों नहीं करते। कर्ण को वे पत्थर का एक पुतला समझते हैं क्या? क्या से व्यक्ति को समुद्र में रहते हुए भी एक घूंट पीने को पानी नहीं मिले, मेरी दशा भी ऐसी ही हो जाती है। अपने इन विचारों को मैं यदि किसी से प्रकट भी करता तो शोण के अतिरिक्त और था ही कौन मेरे पास। मेरा मन घुटता जा रहा था। बड़े लोग छोटों को अपने पास बुलाकर उनके दोष दिखाएं तब तो ठीक है, लेकिन यदि उनकी उपेक्षा करें तो उनके मन का अंकुर घुटने लगता है, फिर जहां उसको रास्ता मिलता है वहीं से बाहर निकलता है। इन 6 वर्षों में उसको क्या प्राप्त हुआ था? घोर असह्य उपेक्षा, ज्वलंत तिरस्कार। कर्ण नामक कोई एक शिष्य इस युद्धशाला में है, कोई किसी को मालूम नहीं था। शाटुवाद करने की मुझको आदत नहीं थी, इसलिए मेरा और शोण का निराला संसार हस्तिनापुर की युद्धशाला में भी अपने आप ही बन गया। कृपाचार्य और द्रोणाचार्य के प्रति आदर होने की बजाय शंका आ बैठी। मुझे ऐसा लगता था कि वे मेरे नाम मात्र के लिए गुरु हैं। जो शिष्यों के मन नहीं जानते वे गुरु कैसे? जो प्रेम के फूंक से शिष्यों के मन की कली प्रफुल्लित नहीं करते वे कैसे गुरु? मेरा मन गुरु प्रेम के लिए तरसता था, इसीलिए मैं प्रतिदिन अपने गुरु का हाथ अपनी पीठ पर तब तक फिरवाता था जब तक कि पीठ गर्म नहीं हो जाती थी। हाँ, तब तक सूर्यदेव को अर्घ देता रहता। नित्य इसी प्रकार तप्त होने के कारण मेरी पीठ प्रखर हो गई थी। शाला के अन्य युवराज शिष्यों की स्थिति इसके विपरीत थी। कृपाचार्य द्रोणाचार्य दोनों का अत्यंत लाडला था युवराज अर्जुन, वह अकेला ही क्यों प्रिय है। इसीलिए युवराज दुर्योधन जानबूझकर कोई अन्य कारण ढूंढकर अपना प्रस्त पक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता। उसका पर्यवसान झगड़े में होता। अपने भाई को छेड़ने के कारण भीम को क्रोध आता। अपने क्रोध को वह कभी नहीं रोक पाता था। क्रोध में होठ चबाता हुआ वह जो मिलता उसी पर टूट पड़ता। द्रोणाचार्य के भाई से झगड़े की शिकायत कोई उन तक नहीं पहुँचाता था। एक बार तो यह सुना था कि वे सब लोग मिलकर वन विहार के लिए नगर के बाहर गए थे। वहां जब भीम सो रहा था तब दुर्योधन ने दुशासन की सहायता से मल्लताओं से उसके पैर कसकर बांधे और फिर उसको एक सरोवर में फेंक दिया था, परंतु भीम को कुछ नहीं हुआ। कहा जाता है कि उसको जल देवताओं ने मुक्त कर दिया था। उसको इस बात पर कभी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि एक तो भीम को उन्होंने यदि इस प्रकार सरोवर में फेंक दिया होता तो निश्चय हुआ जीवित न रहा होगा, क्योंकि सरोवर में जल देवता नहीं होते, वहाँ विशाल जबड़ वाले मत्स्य और क्रूर मगर होते हैं। और दूसरी बात यह कि सरोवर से बाहर आने पर तो भीम को यह पता चल ही जाता कि उसको जान से मारने का षड्यंत्र रचा गया है। यह कार्य दुर्योधन के अतिरिक्त अन्य किसी का नहीं हो सकता। यह जानकर उसने बाहर आते ही सबसे पहले अपनी गदा से उसका काम तमाम कर दिया होता। वह इसीलिए भीम अपने क्रोध को कभी वश में नहीं कर पाता था। कोई कितना ही समझाता वह उसको नहीं मानता, और कोई कितनी ही सांत्वना देता उसे वह संतुष्ट नहीं हो सकता था। युवराजों के झगड़े निपटाते समय और उनके पुरुषार्थ का वर्णन करने में आकाश पाताल लेख करते समय भला सारथी के दो लड़कों की ओर ध्यान करने के लिए किसके पास अवकाश होता। इस प्रकार से 6 वर्ष बीत गए। 16 वर्ष के किशोर का 22 वर्ष के तरुण में रूपांतरण हो गया। इच्छा होने लगी कि साहस भरे और चुनौती देने वाले प्रत्येक कार्य को स्वीकार किया जाए। तारुण्य ज्वलंत धमनियों का अवृत स्पंदन, प्रकृति द्वारा मानव को प्रदत्त सर्वश्रेष्ठ वरदान, जीवन के नगर का एकमात्र राजपथ, प्रकृति के साम्राज्य का बसंत, मन मयूर के पूर्ण फैले हुए पंख, विकसित शरीर भुजंग का सुंदर चितकबरा फन, भावनाओं के उद्यान का सुगंधित कीवड़ा, विश्वकर्ता के अविरत दौड़ने वाले रथ के सबसे शानदार घोड़ा, मनुष्य का गर्व से सिर उठाकर चलने का समय, कुछ न कुछ अर्जन करने का समय, शक्ति का और स्फूर्त का काल, कुछ न कुछ करना चाहिए इस भावना को सच्चे अर्थ में प्रतीत कराने वाला काल। बचपन के सभी वस्तुओं का रंग हरा होता है। युवावस्था के सभी वस्तुओं का रंग गुलाबी और कसरिया होता है। युवक की दृष्टि बड़ी की उड़ान क्षितिज को छूने वाले आकाश को भी पार कर जाती है। प्रत्येक गतिमान और प्रकाशवान वस्तु की ओर उसका सहज सुंदर खिंचाव होता है। जहाँ जहाँ तो कुछ संभव होता है उसको संभव करने की अंगभूत तरंग उसमें होती है। आजकल मुझको अपने ही बचपन की और किशोरावस्था कुछ बातों पर हंसी आ जाती थी। गंगा को गंगा माता कहने वाला कर्ण, उसके किनारे पर उत्तरी में सीपियाँ इकट्ठा करने वाला कर्ण, गरुण की तरह आकाश में उड़ने की बात करने वाला कर्ण, बालकों के आग्रह को स्वीकार करता राजा के रूप में पत्थर के सिंहासन पर बैठने वाला कर्ण, अपने कुंडल कैसे चमकते हैं या गंगा के पानी में निहारने वाला कर्ण, कितनी प्रवंचना थी उस समय के आनंद में, कितनी अंधी थी उस समय की श्रद्धा, कितना संदेह, कितना अज्ञान, यह सब धुंधला होता गया। काल के प्रहार से ने सब कुछ ध्वस्त कर दिया। जीवन के रथ की बलगाएं युवावस्था के सारथी ने अपने हाथ में ले ली। इस रथ में 5 घोड़े होते हैं, पुरुषार्थ, महत्वाकांक्षा, निर्भयता, अभिमान और औदार्य। जो सामर्थ्यशाली होता है वही है यौवन। प्रकाश कभी काला होता है क्या? ऐसा सामर्थ्यशाली यौवन ही अपने साथ औरों का मान बढ़ाता है। महत्वाकांक्षा तो युवक का स्थायी भाव है, मैं महान बनूंगा, परिस्थिति के मस्तक पर पैर रखकर मैं उसको झुका दूंगा, यह विचारधारा ही तरुण की ऊंचा उठाती है। निर्भयता तरुण के जीवन संगीत का सबसे ऊंचा स्वर है। ईश्वर की भग्न और बिखरी हुई ध्वनि है भय। फटे बांस की सी ध्वनि भी कभी कभी किसी को अच्छी लगती है। जग ऊंचे स्वर की तान सुनने को सुख होता है, फटी हुई आवाज नहीं। अभिमान है युवावस्था का आत्मा। जिस मनुष्य में श्रद्धा नहीं वह मनुष्य नहीं, और जिस तरुण में अभिमान नहीं वह तरुण नहीं। तरुण मनुष्य अपनी श्रद्धाओं पर सदैव अभिमान करता है। समय आने पर उसके लिए प्राण तक देने को वह तैयार रहता है। और उदारता है यौवन का अलंकार। अपनी शक्ति का अन्य दुर्बलों के संरक्षण के लिए किया गया उपयोग, स्वयं जीवित रहकर दूसरों को जीने का अमूल्य साधन, ऐसी होती है तरुणाई। जहाँ तक यह होती है वहाँ अपमान से व्यक्ति चिढ़ता है। जहाँ यह होती है वह अपने न्यूनापूर्ण अधिकार पर किसी के आक्रमण से व्यक्ति क्रुद्ध हो उठता है। जहाँ यह होती है वहाँ यह अन्याय के पक्ष का उन्मूलन कर देती है। जहाँ यह होती है वहीं वास्तव में विजय होती है, वहीं प्रकाश होता है। प्रकाश न हो तो फिर अंधकार, अपमान कालिंगन करने वाला अंधकार, पराजय के विष को अमृत समझ कर पचा जाने वाला अंधकार, अन्याय का समर्थन करने वाला अंधकार, आक्रमण से भयभीत होने वाला अंधकार। 29 अश्वत्थामा में मेरा जो प्रेम था उसका रूपांतर अब प्रगाढ़ स्नेह में हो गया था। समस्त हस्तिनापुर में वही एकमात्र मेरा प्राण प्रिय मित्र बन गया था। एक बार हम दोनों गंगा किनारे बैठे बातें कर रहे थे। अकस्मात सहज रूप में उसने कहा, कर्ण तुम मुझको अच्छे लगते हो। इसका कारण केवल तुम्हारा स्वभाव ही नहीं बल्कि तुम्हारा सुंदर शरीर भी उसका एक कारण है। तो क्या मैं इतना सुंदर दिखाई देता हूँ? हाँ, तुमने यह सपने में भी न सोचा होगा, लेकिन प्रतिदिन तुम जिस समय स्नान करके खूब धूप चढ़ने को गंगा से लौटा करते हो, उस समय सारे समाज के बंधनों को ताक पर रखकर इस नगर की स्त्रियां कुछ न कुछ कारण निकालकर भवनों के गवाक्ष खोलती हैं केवल तुमको देखने के लिए। तुम यह क्या कह रहे हो अश्वत्थामा? यदि यह सच है तो फिर आज से मुझको गंगा का मार्ग बदलना पड़ेगा। यह सच है कर्ण? ऋषभ जैसे तेरे पुष्ट कंधे, गुड़हल के फूल जैसे लाल गाल, उन गालों पर तेरे कानों के कुंडलों के पड़ने वाले नीले से दीप्ति वाले, खड्ग की धार की तरह सरल और नोकदार नासिका, धनुष के दंड की तरह वक्र और सुंदर भाव हैं, कटेरी के फूल जैसे नीलवर्ण नयन, थाली जैसा भव्य कपाल, गर्दन पर होते हुए कंधे तक झूलने वाले महाराजाओं के मुकुट के स्वर्ण को भी लजाने वाले तुम्हारे सुनहले घने घुंघराले बाल और रथ के खम्भे जैसे शरीर के कसे हुए सबल स्नायु, यह समस्त स्वर्गीय वैभव होने के कारण तुम भला किसे अच्छे नहीं लगोगे? अश्वत्थामन, मुझको विश्वास है कि सच बात कहने पर तुम क्रुद्ध नहीं होगे। कहो कर्ण, तुम्हारे पिताजी को क्यों इनमें से कोई भी बात अच्छी नहीं लगती? इन 6 वर्षों में उनको और उनके लाडले अर्जुन को क्या मालूम कि कर्ण कौन है, कहाँ है? यह सत्य है कर्ण, लेकिन ऐसे तुम अकेले नहीं हो। शस्त्र विद्या सीखने के उद्देश्य से निषद पर्वत पर से सैकड़ों योजन पार करके आए हुए निषाद राज हिरण्य धनु के पुत्र का एकलव्य का भी यही दुख है। तुम्हारे मन की बात सुनने के लिए कम से कम तो मैं यहाँ हूँ, परंतु उस एकलव्य की मेरे पिताजी के बारे में क्या धारणा होगी मैं सोच भी नहीं सकता। पिताजी ने ऐसा व्यवहार किया या मैं कैसे बताऊँ? सभी पुत्र अपने पिता के अंतरतम को नहीं जान सकते वसु। उसका उत्तर सहज सत्य था, इसीलिए वह मुझको अत्यंत अच्छा लगा। अधीरथ पिताजी के मन में क्या क्या कल्पनाएं हैं यह बात क्या मैं कभी जान सकता था? अश्वत्थामा ने मुझको एकलव्य का स्मरण करा दिया। इसे कभी न देखे हुए लेकिन एक समदुखी के रूप में एकलव्य के प्रति मेरे मन में अनजाने ही एक प्रकार का अनुभूत आदर उत्पन्न हो गया। 30 एक बार मैं और अश्वत्थामा दोनों खड़ग के अखाड़े के पास खड़े थे। उस अखाड़े के चारों ओर सब्बल जैसी मोटी मोटी लोहों के क्षणों की चार दीवारी थी। उस चार दीवारी की एक क्षण की नोक को किसी ने झुकाकर धरती पर टेक दिया था। वह उसी स्थिति में थी। वहीं एकमात्र क्षण उस चार दीवारी से बाहर निकली होने के कारण अच्छी नहीं लग रही थी। उसको सीधा करने के विचार से मैंने उसको हाथ लगाया। उस समय बड़ी शीघ्रता से अश्वत्थामा बोला, रहने दो कर्ण, इसी सभी इस पर प्रयोग कर चुके हैं। एक दिन क्रोध के आवेश में भीम ने इसको झुका दिया था, अन्य कोई इसको सीधा भी नहीं कर सका, वह कभी इसको सीधी करेगा। अच्छा, तो फिर मैं इसको सीधी करूँ क्या? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, यह तुमसे हो नहीं सकेगी। अच्छा, मैंने पैरों से पद त्राण उतार कर अलग रख दिए, उत्तरीय कटी से लपेटा और मुझसे और उससे बोला, इस क्षण को वह यहाँ से सीधी कर जैसी वह थी वैसे ही उसको चार दीवारी में लगा दूँ, तुम देखते रहो। मैं उस क्षण के पास गया, एक बार आकाश की ओर देखा, गुरुदेव चमक रहे थे। बाएं हाथ में सारी शक्ति एकत्रित की, आंखें मीच कर पूरी शक्ति से मैंने वह क्षण हाथ के झटके के साथ ऊपर खींची। पहले झटके में वह कमर के बराबर ऊंची हो गई। उसका ऊपर आया हुआ सिरा कंधे पर लेकर बाएं हाथ के पंजे से धीरे धीरे मैंने उसके चार दीवारी के घेरे में वैसे लगा दिया जैसे वह लगी हुई थी। अश्वत्थामा अवाक हो गया। मेरी पीठ पर थाप मारने के लिए उसने अपना हाथ मेरी पीठ पर रखा, पर फिर तुरंत उसने ऊपर ही ऊपर उसे उठा लिया। क्या हुआ अश्वत्थामन? मैंने आश्चर्य से पूछा। अरे, तुम्हारी देह तो अग्नि की तरह जल रही है, भेदक दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए उसने उत्तर दिया। उसके बाद भीम ने वह सीधी हुई क्षण कभी देखी होगी, वह प्रतिदिन एक क्षण टेढ़ी कर जाता। मैं प्रतिदिन रात में उसकी टेढ़ी हुई क्षण को बाएं हाथ से सीधी कर दिया करता।